क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
सुश्री छछुंदरिया ने खोजी पुरानी गुफाएं। मिस बैंडिकोटा से मिले। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस एक नन्ही सी भारतीय छछुंदर थी जो बिलों की एक अड़गम बड़गम भूल भुलैया में अपनी माँ, सात बहनों और 10 भाइयों के संग पलकर बड़ी हुई थी। 18 के 18 भाई बहन बला के ऊधमी थे, हर दम नाक में दम। छछुंदर परिवार के ज्यादातर सदस्य अपना भोजन कुतरने के लिए पास के खेतों में जाते थे, लेकिन जब से वह एक किसान की चूहेदानी की कैद में जाते जाते बची है, तब से अपनी मिस बैंडिकोटा यानी सुश्री छछुंदरिया ने कसम खाई है कि अब से वे किसी खेत का रुख नहीं करेंगी। तुम भला और क्या कर सकती हो, उसकी मां ने पूछा। तब मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस हौले से मुस्कुरा दी थी और मुस्कुराकर उसने कहा था, मैं बिल बना सकती हूं। सो हर रात वे सेंध मारने में जुट जाती और हर सुबह वे खुद को कहीं और पाती, नए जोखिम, नए दोस्तों और भोजन की तलाश में। एक बार वे बोर्डी के समुद्र तट पर जा निकली, जहां उनकी मुलाकात पोरपिटा और रतीले बुलबुले केकड़ों से हुई। उसने समुद्र भी पहली बार ही देखा था, लेकिन वे जहां जहां जाती उनका खोजी पिटारा भी जाता, साथ साथ पिटारे में उनका काला चश्मा, उनकी दूरबीन, खुर्दबीन और हां, उनके प्रिय चिपकने वाले बैंडेज भी रखे जाते। आइए मिस बैंडिकोटा के साथ भारत के किसी और भूभाग के साहसी अभियान पर हम भी चले। तभी किसी ने रेत में बने सुराख में से अपनी चूहिया सी नाक बाहर निकाली। ऐ, ये कौन है? अपनी मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस, और कौन? रात भर गुलाबी, सफेद और कत्थई रंग की चट्टान की परते दर परते खोदते खोदते उसने एक ताजा तरीन बिल में से बस अभी अभी ही बाहर झांका था। सूरज बस उगने को ही था। वह अपने गॉगल्स अपनी नाक पर बैठाने की धुन में ही थी कि उसे किसी विचित्र चीज की उड़ती उड़ती एक झलक भर दिखाई दी। वह फटाक से अपने बिल के अंदर घुस गई। अब की बार जरा सावधानी से सिर उठाया। डरी सहमी निगाहों से उसने झांका। काले मोटे एक गोल फ्रेम में जड़ी एक कांच की एक गोल खिड़की सी दिखती थी। उस कांच के पीछे से एक बड़ी काली आंख ने उसे घूरा। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। था क्या यह खुर्दबीन? इसके पहले कि वह उस काली बड़ी आंख को कुछ कह पाती, उसी ने पूछ लिया, अब तुम कौन हो?
मैं मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस हूं, अब तुम कौन हो?
मैं एक खोजी हूं। एक कदम पीछे होते हुए वह इंसानी बच्चा बोला। वह मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस को देख मुस्कुरा रहा था, ना बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, उस बच्चे का कद ठीक एक खोजी जितना ही था। वह बोला, आज मेरा इरादा भीम बेटका की पहाड़ियों पर घूमने का है। अपनी मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने बड़े ध्यान से उस बालक को देखा। सिर पर हरी टोपी, गले में दूरबीन लटकाए, कंधों पर कत्थई रंग का बैकपैक लादे और हाथ में एक बड़ा आतिशी शीशा लिए। मिस बैंडिकोटा ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। मुझे भी धुम्मकड़ी पसंद है। मैं नई नई सुरंगें बनाती हूँ जो नई नई जगहों में जा खुलती है। अपनी खुर्दबीन और पिटारा लिए वह जोश में आ बोली। तब लड़के ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल से होकर गुजरने वाला एक खुफिया रास्ता जानता हूं, क्या तुम मेरे साथ उस खुफिया राह चलोगी? आप तो समझ ही गए होंगे कि अपनी मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस तो हरदम किसी नई तिकड़म की राह ही तका करती थी। बस फिर क्या था, तपाक से वे अपने बिल से बाहर निकल आईं। दो नए दोस्त अपने सफर पर निकल पड़े। उस संकरे धूल भरे रास्ते पर जो भीम बेट का पहाड़ियों को जाता था। ठंड का मौसम था, जंगल सूखा और उजड़ा उजड़ा सा था। राह में उन बेपत्ता नंगी डालियों की धुमैली परछाइयों का एक मकड़ जाल सा बिखरा हुआ था जो रह रहकर हवा के झोंकों में कांप उठता। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस हल्की हल्की छलांगे मारती एक परछाई से दूसरी परछाई के पार होती। वह बड़ी सावधानी से अपने पंजों के बल जमीन पर अपने पांव धरती, जिससे कि रोशनी और छाया के उस खेल में कोई खलल ना पड़े। जब तब वह पलटकर देखती यह पक्का करने के लिए कि डालियों की छाया की वो बुनावटें वैसी की वैसी ही है। सुबह की ठंडी बयार हौले से उन्हें छू कर चली जा रही थी। उधर धनेश पक्षियों का एक जोड़ा पेड़ों की खामोशियों को चीरता अपना दो गाना गाने में लगा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ते की चढ़ान भी और तीखी होती गई। फिर भी उन्होंने अपनी चाल एक सी बनाए रखी। अचानक उनके दाहिनी तरफ हुई पत्तों की नर्म सरसराहट से वे ठिठक गए। एक अजीब सा जानवर निकलकर उनके रास्ते के पार हुआ। वह थोड़ा थोड़ा लोमड़ सरीखा था और कुछ कुछ बारहसिंगा सा। वह ऊंचा था और तगड़ा भी दिखता था। उसकी चमड़ी नीली सांवली थी, उसके कानों के बीच दो मुड़े मुड़े सींग थे, गले पर उसके एक सफेद निशान भी था जो दूर से ही दिख जाता था, और उसके नीचे थी काले रंग की एक छोटी सी दाढ़ी। वह क्या है, मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने पूछा। वह तो नील गाय है, आंखें चमकाते हुए लड़का बुदबुदाया। इससे पहले कि मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस अपना नया सवाल दागती, नीलगाय अचानक से उसी तरह गायब हुई जैसे वह सामने आई थी।
पेड़ों की शाखा के टूटने से जंगल की खामोशी अचानक से टूट गई। इस कोलाहल से भरमाए छछुंदर और लड़का थोड़े से बिदके, थोड़ा रुक वे आगे बढ़े, सतर्क सतर्क। वह शोर ठीक ऊपर से आता लगता था। उन्होंने ऊपर देखा, ये लो, ऊपर काले मोह लंगूरों की एक टोली पेड़ों के झुंडों के बीच उछल कूद कर रही थी। लंगूरों का यह मस्त नजारा देख उनकी खुशी को कोई पारावार न रहा। दरअसल एक जंगली फल का कोई पेड़ उस पूरे हंगामे का ठीहा था। बड़े बड़े गोल मटोल फलों से लदी उस पेड़ों की शाखें नीचे को झुकी जा रही थी। पेड़ों के नीचे की जमीन पके पकाए पीले हरे फलों से पटी पड़ी थी। उनमें से कई फल तो फूट भी चुके थे। नरम नरम उनका गूदा चटक रंगी केसरिया था। हवा उनकी मीठी मीठी खुशबू से शराबोर थी। ये कौन सा पेड़ है? मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने चीख कर उन उत्पाती लंगूरों से पूछा। सवाल से चकित एक बुजुर्ग सा दिखता लंगूर बोला,
यहां बेल का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम? हम हिंदुस्तानी लंगूर सदियों से इसके फलों का मजा लेते आ रहे हैं।
मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले उसने बेल फल कभी खाया ही नहीं था।
कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ,
लंगूर ने कहा।
यहां सबके लिए बहुत फल है।
मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस तुरंत उस पेड़ पर झपट पड़ी और फिर बेल फल के कड़े खोल को नोच नोच कर खोल डाला। इधर छछुंदरिया स्वादिष्ट फल को मजे ले लेकर खा रही थी, उधर वह छोकरा तरह तरह की सूखी पत्तियां बटोर बटोर अपने झोले में भरे जा रहा था। यात्रा के बीच की इस छुट्टी से मिली ताजगी से मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस और वह छोकरा नई फूर्ती के साथ ऊंचे पहाड़ों की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर की ओर बढ़े, वैसे वैसे जंगल भी पीछे छूटता गया। आगे जाकर सड़क बलुआ पत्थर और स्फटिक की चट्टानों से होकर मुड़ी। मोड़ पर एक बड़ा भारी सा पत्थर खतरनाक ढंग से टिका था। उस पर पीछे की ओर से एक अकेला सेमल पेड़ बल्ली की तरह परवान खड़ा था। उसके कंटीले तने से उसकी जवान धौली शाखें ऊपर को बाहर निकली जा रही थी। उसके ज्यादातर पत्ते झड़ चुके थे। शोक किरमिजी रंग के फूल अभी अभी ही खिलना शुरू हुए थे।
मेरे पिटारे के लिए एक ताजा सेमल का फूल तो लेना ही पड़ेगा,
मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस के खोजी मित्र ने घोषणा की। इसके बाद तुरंत ही वे चट्टान पर चढ़ने लगे। ज्यों ही वह बालक सबसे नीची डाल को पकड़ने के लिए जरा टेढ़ा हुआ, वह फिसल गया और उसके साथ फिसली अपनी मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस भी। वे दोनों पत्थर से लुढ़कते हुए नीचे धूल भरे ढलान पर आ गिरे। धम धम धम।
बेचारे लड़के का घुटना छिल गया था और वह अपना पांव पकड़े दर्द के मारे कराहे जा रहा था। आउच!
मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस तो उसके बगल में ही थी, सो उसने झटपट चिपकने वाला एक बैंडेज निकाला और लड़के के छिले घुटने पर चेप दिया। अपना धूल धक्कड़ झाड़ते हुए वे दोनों उठ खड़े हुए, लल्लू सी उस घटना पर खूब हंसते हुए। जैसे ही मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस सड़क की ओर बढ़ी, उसकी आंखें एक अद्भुत नजारे पर टिकी। देखो, हमने दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग खोज ली है, हैरान हो वह बोली। इस पर वह लड़का मुस्कुराया और स्नेह से उसने मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस की पीठ थपथपाई। भीम बेटका की गुफाओं में आपका स्वागत है। और मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस जो है अपनी खुशी को दबा ही नहीं पा रही थी और न ही वह इन रहस्यमयी गुफाओं के भीतर दाखिल होने से खुद को रोक पा रही थी, और उसके सवाल कुल बुला रहे थे। ये गुफाएं किसने बनाई, कब बनी ये गुफाएं, उन्होंने इन्हें कैसे बनाया होगा, इनके अंदर कौन रहता है। एक बार में एक सवाल मेरी प्यारी दोस्त, लड़का बोला, और वे दोनों हंसते हंसते गुफा में भीतर दाखिल हुए। अंदर एक और अचरज उनकी राह तक रहा था। गुफाओं की दीवारों पर लाल, सफेद और कहीं कहीं गेरुए और हरियाले से रंग में अजब गजब जानवरों और छड़ी सरीखे इंसानों के चित्र बने हुए थे। वे चित्र ऐसे थे मानो कोई पुरातन कथा कह रहे हों। एक बार फिर मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने अपने मित्र की तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब उस मित्र ने उसे उन पुरानी गुफाओं की कहानी सुना डाली। लाखों करोड़ों साल पहले से चूना पत्थर और सिलिका की परतें एक के ऊपर एक जमा होती गई। उन परतों से मिलकर बने विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत माला के उत्तरी छोर पर थी सबसे बड़ी भीमबेटका पहाड़ियां। करोड़ों वर्षों तक धूप और हवाओं ने इन पहाड़ियों को अनोखे ढंगों से खुरच खुरच ये मायावी गुफाएं रची हैं। कुछ पुरातत्वेताओं का कहना भी है कि संभवतः आदि मानव श्रीमान होमो इरेक्टस का कुनबा सबसे पहले यहां भीमबेटका में आकर रहा होगा। कोई लाख बरस पहले उन्होंने ही इन गुफाओं में शरण ली होगी। उन्होंने ही शायद ये छोटी छोटी प्यालियां या छेद खोदे होंगे जिन्हें हम आज भी इन गुफाओं में देखते हैं। आगे चलकर शायद 15,000 बरस पहले भारत में मानव के शुरुआती पुरखों यानी कि होमो सेपियंस परिवार ने भीमबेटका को ही अपना घर बनाया। वे हिरणों और बनेले पक्षियों को खाकर जिंदा रहे, जंगल में जानवरों का शिकार करने और खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने तीर कमान और भालों जैसे हथियार बनाए। उनका जीवन जरूर खतरे से भरा रहा होगा, लेकिन वे लोग इसके अलावा जीने का कोई और तरीका जानते भी नहीं थे। उन पर जब तब बनेले सुअर और हाथी हमला बोलते रहते। कई बार वे बहादुरी से लड़ते और कई बार उन्हें अपनी जान की खातिर वहां से भाग खड़ा होना होता। और जब वे विजयी हो अपने मजबूत कंधों पर उन हिंसक जानवरों को लादे घर लौटते तो खुशी मनाते अपनी जीत का संगीत और नाच के साथ। इनमें से कुछ शिकारी कलाकार भी थे। वे अपनी कहानियां अपने घरों की दीवारों पर रंगा करते। आज हम हजारों बरस पहले अंकित जोखिम और खतरों से भरी उनकी कहानियां यहां देखते हैं। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस तो हैरान से उन चित्रों को ताकती ही रही। पुरानी गुफाओं की वे पुरातन कहानियां मानो जीवित हो उठी थी। अचंभित खोजी युगल एक अध खुली गुफा में दाखिल हुआ। उनकी दीवारें जानवरों की सैकड़ों छवियों से अटी पड़ी थी। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने अपनी खुर्दबीन से उन तस्वीरों को बड़ी बारीकी से देखा। इस दौरान उसका वह बाल मित्र उन तमाम जानवरों के चित्र अपनी डायरी में बना रहा था। अपने पशु स्केच बनाते समय वह उन पर करीने से नंबर भी दर्ज कर लेता। किसी एक जानवर की ओर इशारा कर उसने पूछा, पता है ये कौन सा जानवर है? मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने बड़े ध्यान से उस चित्र को देखा, फिर वह खुशी से फूली, अपने मित्र की ओर घूमी और विस्मय से बोली, यह तो छछुंदर सी लगती है। ज्ञान की इन बातों के बाद मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस तेजी से उन चट्टानी सुराखों के आर पार दौड़ने लगी। वे सैकड़ों थे, कुछ साकरे, कुछ खुले, कुछ लंबे, कुछ बड़े, तो कुछ महज झिर्रियों से एकदम उसके बिलों की तरह। कुछ घंटों बाद जब उसकी धमा चौकड़ी अभी चल ही रही थी तो उसके दोस्त ने उसे तुरंत आने को कहा, यहां आओ जल्दी, चलो मैं तुम्हें भीम भेट का पहाड़ियों की सबसे खास चट्टान दिखलाऊं। मेरे पिता वहां ऊपर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने तेजी से कुलांजे भरी और फिर वे दोनों एक साथ दौड़कर पहाड़ी के सिरे तक जा पहुंचे। वो देखो, कछुए के आकार की चट्टान, तुम यहां से बेतवा नदी की घाटी देख सकती हो। इधर मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस अपनी दूरबीन से नजारों के मजे ले रही थी। उधर वह लड़का दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। पहाड़ी के ऊपर से बहती दोपहर की ठंडी बयार से मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ऊंघने लगी। वह उस कछुआ आकार की चट्टान के नीचे एक आरामदेह आले में जा दुबकी। जब उसकी पलकें मूंदने लगी तो उसके दोस्त की पुकार आई, क्या तुम कल भी यहां रहोगे? हवा के एक खामोश झोंके पर तिरता उसका जवाब उसके दोस्त तक पहुंचा, आज की रात मुझे एक नई सुरंग खोदनी है, कल कोई नई जगह खोजने के लिए। सोचो क्यों, क्या तुम उन जानवरों के नाम सोच सकते हो जिनके चित्र उस लड़के ने अपनी डायरी में बनाए थे? ये सारे जानवर भारत की धरती के ही माने जाते हैं। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस के साथ मिलकर जरा इन्हें पहचाने और बताएं कि इनमें से किन किन को आप पहचान सकते हो। यहां हम कुछ संकेत आपकी मदद को दे रहे हैं। इसका अफ्रीकी रिश्तेदार सबसे बड़ा जमीनी स्तनधारी है। भव्यतम पक्षियों में से एक अपने बरसाती नाच के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये अगला वाला। बिल्ली वंश का सबसे बड़ा धारीदार सदस्य। जैसा कि इसका वैज्ञानिक नाम जताता है, इसका एक सींग है। बिल्कुल सही। मध्य भारत के पेड़। मिस बैंडिकोटा बेंगालेंसिस ने भीमबेटका की प्राचीन गुफाएं मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से सटे जंगल के बीच में खोजी। मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा जंगल हैं। यह अपने सागौन, साल व बांस के जंगलों और मिले जुले गीले जंगलों वाले विशाल मैदानी इलाकों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पुरखे सालों साल पेड़ों की संगत में रहते आए हैं और यूं रहते रहते उन्होंने पेड़ों के अनेक उपयोग भी जाने। पलाश मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। इसके पेड़ों को जंगल की आग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल गुच्छों में सुर्ख केसरिया और लाल रंग में खिलते हैं। पलाश के बीज, पत्तियां और गोंद औषधीय गुणों वाले होते हैं। आंवले का पेड़ हल्के हरे पीले रंग के फल देता है, जिसे हम आंवला कहते हैं। विटामिन सी का यह एक श्रेष्ठ प्राकृतिक स्रोत है। बबूल का पेड़ मूलतः हमारा देसी पेड़ है। यह सूखे और रेतीले वातावरण में उगता है। यह एक मजबूत और कांटेदार पेड़ होता है और यह सूखे और बाढ़ दोनों का सामना मजबूती से कर सकता है। इसकी कोमल डंठले पारंपरिक रूप से दातौन के बतौर इस्तेमाल होती रही है। महुआ का पेड़ एक देसी पेड़ है और मध्य व उत्तर भारत के वनों की अनेक जनजातियों द्वारा इसे पवित्र पेड़ भी माना जाता है। महुआ के फूल खाए जाते हैं और इनसे शहद, शरबत व मुरब्बा भी बनाए जाते हैं।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियां आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।